तो ही ने तो लिखा है कि जिसका नाम सुनकर के हे भवानी ज्ञानी नर भव बंधन काट लेता है। दूसरों को रास्ता सिखाते हो, तुम्हें रास्ता नहीं सूझता, मुझे बुलाते हो। तो कहा महाराज, भले ही कहा हो यह नर ज्ञानी, तो मैं तो ज्ञानी नर नहीं हूं, मैंने दूसरों के लिए रास्ता लिख दिया। जो ज्ञानी नर हैं, जो ज्ञान के रास्ते से जा रहे हैं, वे भगवान के नाम का जाप करते हुए बंधन को काट लेते हैं, पर मैं तो अपने को ज्ञानी नहीं मानता महाराज, इसीलिए तो तुम्हें बुला रहा हूं। अच्छा, तुम ज्ञानी नहीं मानते तो तुमने तो भक्त के लिए भी रास्ता लिखा है। क्या लिखा है प्रभु? अच्छा, बहुत भूल जाते हो, लिखते तुम हो और याद दिलाना पड़ता है मुझे। तुमने लिखा है भव बंधन ते छूट ही नर जप जाकर नाम। भव बंधन से छूट जाता है भक्त जिनके नाम का जाप करके, तो भक्त भव बंधन से छूटता है और ज्ञानी भव बंधन को काटता है। तो तुम अगर काट नहीं सकते तो छूट जाओ अपनी भक्ति के द्वारा। राम महाराज, यह भी तो मुझसे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ऐसा है महाराज, अब ये जो दो प्रकार की आपने साधनाएं कही ना, तो इन दोनों प्रकार की साधनाओं में बड़ा परिश्रम है। एक तो ज्ञानी का साधन है, दूसरा भक्त का साधन है। एक सोहम की साधना है, दूसरी दासोहम की साधना है। ये दो तो साधनाएं हैं, एक ज्ञान का रास्ता, दूसरा भक्ति का रास्ता। भक्ति के रास्ते में सोहम अपने अहम का विस्तार ज्ञानी इतना करता है कि यह जो माया की डोर है पट से टूट जाती है। और भक्त क्या करता है? भक्त दासोहम का रास्ता अपनाता है और दासोहम कहते हुए अपने आप को इतना छोटा कर लेता है कि माया उसके चतुर्दिक डालती है यह डोर, और जिस समय गांठ कसने लगती है उस समय नाहम कहते हुए, दासोहम कहते हुए अपने अहम को इतना छोटा कर लेता है कि उस गांठ में से फिसल करके निकल जाता है। चाहे तो कहें कि हम सोहम अपने अहम को इतना बढ़ा लें, चाहे हम महान अहम की साधना करें, अपने अहम का इतना विस्तार करने की माया की डोर हमें बांधने के लिए पर्याप्त ना हो, और यदि वह बांध भी दे तो हम अपने अहम को इतना बढ़ा दें कि माया की डोर पट से टूट जाए, यह ज्ञान का रास्ता है। यह दूसरा रास्ता है महानत्वम का, दासोहम का, जहां पर हम अपने अहम को इतना छोटा कर देते हैं कि उस माया के बंधन की गांठ से फिसल करके निकल आते हैं। तुलसी ने कहा, प्रभु देखा, अब आपने दो रास्तों की बात कही, एक में अपने को फैलाओ और एक में अपने को संकुचित करो। ना तो मेरे को फैलाने की शक्ति है, ना मैं अपना संकोच कर सकता हूँ, दोनों में ही सम लगता है प्रभु, इसीलिए मैं आपको बुला रहा हूँ। ना तो मैं अपने को फैला सकता हूँ, ना मैं अपना संकोच कर सकता हूँ, इसलिए आओ। ठीक है तुलसी, तुम्हारी बात ठीक लगी। ठीक है, तुम कहते हो ना तो अपने को फैला सकते हो, ना अपने को संकुचित कर सकते हो, दोनों में श्रम लगता है, बात तो ठीक है, आता हूँ। आ गए प्रभु। अच्छा, और लेकर के एकदम तुरंत वे लेकर के उस बंधन को काटने ही तो लगे शस्त्र लेकर। ना 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 प्रभु, ऐसा मत कीजिएगा। अरे, तुमने तो इसलिए बुलाया, बंधन मुक्त होना चाहते हो। हाँ महाराज, तो फिर क्यों ना ना कर रहे हो? यह तो मैं तुम्हें बंधन मुक्त किए दे रहा हूँ महाराज, यही उपाय थोड़े ही है, और क्या उपाय है? जिस बंधन को काट दे रहा हूँ, तुम कहते हो कि तुम स्वयं काट नहीं सकते, तुम स्वयं छूट नहीं सकते, इसलिए तुमने मुझे बुलाया, और मैं आकर के जब बंधन काट रहा हूँ तुम नहीं नहीं करते हो। महाराज, एक चौथा भी तो रास्ता है। कौन सा चौथा रास्ता है? आज तक आपने इस डोर से हमें बांध करके रखा था, अब हम आपको इस डोर से बांध करके देखेंगे कि बंधन में पड़ करके आप कैसे लगते हैं, आपको किस प्रकार की अनुभूति होती है। और इसीलिए कहते हैं, जिन बांधे सुर असुर नाग नर प्रबल कर्म की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हट बांधे सकतन छोड़। जो ब्रह्म सबको कर्म की डोर से बांध करके नचाता है, चाहे वह सुर हो, मुनि हो, नाग हो, नर हो, कोई भी क्यों न हो, कोई भी उस ब्रह्म की रज्जु से मानो मुक्त नहीं है। यह साक्षात अविच्छिन्न ब्रह्म जो सबको कर्म की डोर से बांध करके नचाया करता है, आज यशोदा मैया के प्रेम की डोर में बंध करके स्वयं नाच रहा है और अपने को मुक्त नहीं कर पा रहा है। तो यह है मानो, यह हम देखते हैं ना, आता है सुंदर भागवत में प्रसंग कि कैसे कन्हैया की शिकायत जब की जाती है गोपिका के द्वारा, चारी नंदरानी, यह तेरा कन्हैया कैसा, तेरा लाला कैसा, देख वहां पर आ गया अपने साथियों के साथ मेरे घर में, इसने सारा मक्खन चुरा लिया, खा लिया, अपने दोस्तों को खिलाया, इस पर भी मैं शिकायत नहीं करती। अरे, उसने अपने दोस्तों को खिला करके बाकी मक्खन बाहर फेंक करके बंदरों को खिलाया,
इस पर भी तुझे शिकायत नहीं करती। बाद में इसने मक्खियां फोड़ डाली, उसकी भी शिकायत नहीं करती, पर तू जानती है। उसके बाद अपने दोस्तों को लेकर के रास्ते में आते आते मिट्टी खा रहा था, दोस्तों को खिला रहा था। इसकी शिकायत जरूर करूंगी, अच्छा नहीं है। तो व्रज की रानी है, तेरा लड़का इस प्रकार मिट्टी खाए, लोग क्या सोचेंगे? नंद रानी बच्चे को खाना ठीक देती नहीं है, इसीलिए वह मिट्टी खाता है। क्यों रे, बिलो रही है। फिर मिट्टी खाई? नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। झूठ बोलती, चुगली कर रही मैया, मैंने थोड़े से क्या थोड़ा माखन चुरा लिया। भाव नेत्रों से देखें, कन्हैया भाग रहा है, पीछे नंद रानी भाग रही हैं। ब्रह्म और माया की दौड़, ब्रह्म को कोई पा सका है? ब्रह्म को पाता है कौन? पाता है वाल्मीकि ऋषि रामचरित मानस में क्या कहते हैं?
जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि संभु न चावन हारे, देव न जान मरम तुम्हारा, और तुम्ही को जान निहारा।
तो कौन जानता है?
सोई जान जेही देह जनाई,
वही जानता है प्रभु जिसको तुम खुद होकर के जना देते हो।
तुम्हें वही पकड़ सकता है जिसकी पकड़ में खुद होकर के आ जाते हो।
जब प्रभु ने देखा कि माँ थक रही है दौड़ते दौड़ते, तो पकड़ में आ गए, और माँ ने पकड़ के कहा मुख खोल। और फिर आप पढ़ते हैं भागवत में क्या सुंदर प्रसंग है। कहीं मुंह खोला तो माँ ने क्या मिट्टी देखी? अरे वहां तो लक्ष लक्ष ब्रह्मांडों का पल पल में सृजन और नाश ये माँ देखती। पर यह जो प्रसंग था कि वे पकड़ लेती हैं, जो भाग रहा था कन्हैया, ब्रह्म भाग रहा था, मां पकड़ लेती हैं। भक्त ने उलाहना दी, बड़े ब्रह्म से बालक बने हो, ठीक तो अभिनय करना जानते नहीं। कहा प्रभु ने कि तुम तो यह उलाहना मुझे पहले भी दे चुके हो, पहले तुमने कहा था कि मुझे अभिनय करना नहीं आता, और मां ने मुझसे रोने के लिए कहा इसलिए मैं रोने लगा, पर तुम्हें मैंने समझा दिया कि मैं अभिनय करना भूल नहीं गया था। अरे मैं तो भक्त की इच्छा देखता हूं, उसकी कामना देखता हूं, भक्त जब अपनी कामना बताता है उसके अनुसार करता हूं। आज ये नया इल्जाम लगाने लगे। भक्त ने कहा कि इल्जाम तो लगाऊंगा, दोष तो दूंगा ही। आप जब ब्रह्म से बालक हुए हैं तब आप भागते रहे और मां की पकड़ में नहीं आए। कहा कि आया तो हूं, और किस लिए दोष? जब भगवान पकड़ में आ गए मैया बांधती। आप जानते हैं सुंदर प्रसंग है कि मां बांधती है, चल आज तुझे तो बांध करके मैं रखूंगी। और जब वे बांधने लगती हैं तो रस्सी छोटी पड़ती है, फिर रस्सी बुलवाई जोड़ दिया, और फिर बांधने की कोशिश की, दो अंगुली छोटी पड़ गई और रस्सी बुलवाई। मां आज हैरान हो गई, हैरान हो गई। आज क्या इसको क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी ने जादू कर दिया, चोना चोटका कर दिया। मैं बांध रही हूं, यह लल्ला बंधता नहीं है, रस्सी सारी की सारी आई, बंध नहीं पा रहा है कन्हैया। अंत में कन्हैया ने देखा कि मां बहुत परेशान हो गई है, तब स्वयं होकर के पकड़ में आ गए, बंधवा लिया। भक्त ने कहा है ना, मैं जो दोष दे रहा था है कि नहीं? इतनी देर तक बालक बने हो तो मां को कितना परेशान किया, तुम्हारा ब्रह्मत्व तो हरदम मानो वहां पर जाता ही नहीं है। अरे अगर कोई राजा कहे कि अच्छा मैं भिखारी का पार्ट अदा करूंगा, नाटक तुम लोग खेल रहे हो उसमें मैं भिखारी बनूंगा, और अगर वह मंच पर जाता है और उस राजा को अपने राजात्व का अभिमान बना रहता है, वह क्या भिखारी का पाठ कर सकता है? नहीं करेगा। उसको तो उस समय भूल जाना पड़ता है कि मैं राजा हूं, उसे यही मान करके चलना पड़ता है कि मैं भिखारी हूं। और तुम यहां बालक बनकर के आए हो, हरदम ब्रह्मत्व को सिर पर लेकर के ढोते रहते हो, जरा सोचो तो सही। कम से कम सोचना था मैं बालक हूं क्यों? अरे मां इतना बांधने की कोशिश कर रही थी, क्यों कहते हो? और तुम बस बंधन में पड़ ही नहीं रहे थे, मां परेशान हो गई, आज क्या हो गया, क्या हो गया? किसी ने जादू कर दिया, चोना चोटका कर दिया, इतना सारा उन्होंने इतनी रस्सी मंगवाई, सब किया, और बाद में तुम बनते हो। कहा कि तुम मुझे ही दोष दे रहे हो, तो और किसके दूं? ऐसा नहीं मान सकते कि मां के स्पर्श में कुछ चमत्कार हो सकता है, कि उस स्पर्श के कारण वह रस्सी छोटी पड़ गई हो? ऐसा कैसे मानूं कि मां के स्पर्श में चमत्कार हो सकता है? अच्छा देखो, प्रभु ने कहा तुम मुझे दोष दे रहे हो। अच्छा यह बताओ, जब मां मुझे बांधने के लिए आई तो क्या मैंने अपने शरीर को फैलाया? हाँ कहा तुमने फैलाया तो नहीं। अच्छा जैसा मैं अभी हूं वैसा ही रहा ना? मां जब तक बांधती रही तो बिल्कुल इसी प्रकार अपना रूप मैंने बना करके रखा ना? हाँ वैसा ही तो बना के रखा। तो मुझे दोष क्यों देते हो? जब मैंने अपना शरीर फैलाया ही नहीं, जितना है उतना ही रखा और मां नहीं मान सकी, तो इसका दोष मुझ पर क्यों देते हो? अरे ऐसा क्यों नहीं मानते कि मां के स्पर्श में वह चमत्कार हो गया कि जिस स्पर्श के कारण वह रस्सी दो उंगली छोटी पड़ गई? ऐसा कोई चमत्कार हो सकता है? उसने कहा क्यों नहीं हो सकता?
व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगत बस कौसल्या के गोद। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगत बस कौसल्या के गोद।
अरे अगर वह अनंत सर्वव्यापी ब्रह्म माँ का स्पर्श पाकर के छोटा सा बालक बनकर के उनकी गोद में खेल सकता है, तो अगर रस्सी दो अंगुल छोटी हो गई तो इसके लिए इतना सिर दर्द क्यों मोल ले रहे हो? माँ का स्पर्श ही इतना चमत्कारी है कि जब वह ब्रह्म को अनंत सर्वव्यापी ब्रह्म को बालक बना करके छोटा बालक बना करके गोद में खिला सकती है तो रस्सी भी छोटी हो सकती है। तो यह तुलसी के राम है, ये छोटे हो जाते हैं।
कल हम लोगों ने तुलसी की उस भाव दृष्टि से भगवान श्री राम को देखा जो अनंत सच्चिदानंद घन परमात्मा होते हुए प्रेम के कारण छोटे बालक बन जाते हैं। प्रेम ऐसा है जो उस अनंत ब्रह्मांड नायक को छोटा कर देता है। गोस्वामी जी इसी प्रेम और करुणा की बात दीनता के अपने घाट पर बैठ करके करते हैं। यह उनका चौथा घाट है और हम सब जो प्रभु को पाने के लिए आकुल हैं पर जो अपने को साधना के लिए समर्थ नहीं मानते, ऐसे हम सभी लोग तुलसी के द्वारा इस चौथे घाट पर आमंत्रित हैं। वहां पर व्याकुलता चाहिए, केवल इतना कहने से नहीं होगा कि प्रभु मैं साधन भजन हीन हूं, मेरे पैर नहीं हैं, मेरे हाथ नहीं हैं, बल्कि अंतर की व्याकुलता भगवान के समक्ष निवेदित करनी होगी। जिस प्रकार तुलसी श्री राम को पुकारते हैं उसी प्रकार हमें भी पुकारना होगा। भक्त लोग पूछते हैं, श्री राम कृष्ण देव से भक्तों ने पूछा, महाराज आप कहते हैं कि जगन माता को पुकारना चाहिए तो उनकी दया होती है, पर कहां मैं तो बहुत दिनों से पुकार रहा हूं, कहीं कोई उनकी कृपा तो नहीं दिखाई देती। तब श्री राम कृष्ण एक गीत गाकर के सुनाते, मंगला का वह गीत, डाक दाखी मोन डाकार मोतो कैमुन श्यामा थाकते पारे। ओ मन तू पुकारने के समान तो पुकार, तब देखना कि श्यामा मां चुपचाप कैसे बैठे रह सकती हैं, वे तेरे पास दौड़ करके आ जाएंगी। यह पुकारने के समान पुकारना पड़ता है, यदि ऐसी पुकार ना हो और केवल हम ऊपर से कहते रहें कि प्रभु हमें दर्शन दो, तो प्रभु भी जानते हैं कि यह दर्शन के लिए आकुल नहीं है। छोटा बच्चा आंगन में खेल रहा है, खेलते खेलते बीच में मां मां कहकर के पुकारता है, पर मां जानती है कि बच्चे ने अभी ठीक मुझे पुकारा नहीं, मेरी जरूरत उसे अभी नहीं है, इसलिए वह अपने काम काज में व्यस्त है। पर जिस समय वह बच्चा खिलौने को फेंक देता है और जोरों से मां कहकर के पुकारता है तो मां दौड़ी आती है। वह समझ लेती है कि अब बच्चा सचमुच मुझे पुकार रहा है। इसी प्रकार धन संपत्ति के मद में मदोन्मत्त होकर के हम बीच बीच में प्रभु हमें दर्शन दो ऐसा तो कह लेते हैं, पर ईश्वर जानते हैं कि यह मेरा दर्शन नहीं चाहता। वे जानते हैं कि यह मुझे नहीं चाहता, मुझसे चाहता है। और सचमुच हम ईश्वर को नहीं चाहते, ईश्वर से चाहते हैं। ईश्वर से नाम चाहते हैं, धन चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, सत्ता चाहते हैं, पर कहां हमारे भीतर वह आकुलता है कि वह आकुलता कह सके कि प्रभु मैं और कुछ नहीं चाहता, तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं तुम्हें ही चाहता। यह तुलसी का चौथा घाट इसी व्याकुलता का प्रतीक है। यदि ऐसी व्याकुलता हम में आ गई तो तुलसी कहते हैं कि वह अनंत ब्रह्मांड नायक छोटा हो जाता है, जो समस्त जीवों को कर्म के बंधन में बांध करके नचाया करता है, वह स्वयं प्रेम की डोर में बंध करके नाचने लगता है। आज देखें तुलसी ने अपने श्रीराम का दार्शनिक तत्व क्या रखा। तुलसी श्रीराम के अवतार का प्रयोजन क्या मानते हैं। दो दृष्टियां रामचरितमानस के माध्यम से हमारे समक्ष रखी गई। एक दृष्टि है देवताओं की, वे भी श्री राम को देख रहे हैं। दूसरी दृष्टि है भगवान शंकर की या हनुमान जी की। हनुमान जी भी शंकर के अवतार ही तो माने जाते हैं। तो जो शिव जी की दृष्टि है श्री राम को देखने की, वही दृष्टि हनुमान जी की है। ये दो दृष्टियां श्री राम को देखने की हमें रामचरितमानस में प्राप्त होती है। देवता श्री राम को देखते हैं, वे क्या समझते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं, देवता श्री राम के अवतार का प्रयोजन क्या मानते हैं और भगवान शंकर क्या मानते हैं या हनुमान जी क्या मानते हैं, आज की चर्चा का विषय यह रहेगा। तुलसी के राम के अंतर्गत तुलसी से जब पूछा गया कि आप किस दृष्टि से श्री राम को देखते हैं, तो तुलसी ने कहा कि भाई भगवान शंकर जिस दृष्टि से देखते हैं, हनुमान जी जिस दृष्टि से देखते हैं, उसी दृष्टि से मैं भी देखता हूं। देवताओं की दृष्टि मेरी नहीं है। अब ये देवता किस दृष्टि से देखते हैं? देवता यह मानते हैं कि श्रीराम का अवतरण रावण के विनाश के लिए हुआ है। यह जो राक्षस कुल है, जो देवताओं को तंग करता है, कष्ट देता है, इस राक्षस कुल के विनाश के लिए श्रीराम का अवतरण हुआ है। यह देवताओं की दृष्टि है। पर भगवान शंकर नहीं मानते ऐसा। गोस्वामी तुलसीदास जी यह बात स्वीकार नहीं करते। क्या एक रावण नामक व्यक्ति के वध से, एक रावण नामक व्यक्ति के विनाश से समस्या का नाश हो जाएगा? यह प्रश्न तुलसी उठाते हैं कि रावण का विनाश हो गया तो क्या उससे संसार की समस्या मिट गई? कहां मिटती है? एक व्यक्ति के विनाश से समस्या का विनाश नहीं हुआ करता। रावण अत्याचारी था, ठीक है, कुंभकर्ण अत्याचारी था, मेघनाथ अत्याचारी था, और ये निरंतर अत्याचार किया करते थे, देवताओं को त्रस्त करते थे। रावण देवलोक पहुंच जाता था और इन देवताओं को हरा करके बंदी बना लेता था, उनकी सारी संपत्ति छीन लेता था, ऐश्वर्य छीन लेता था, इसलिए देवता दुखी थे। उनका सब कुछ चला गया, उनका ऐश्वर्य छिन गया, भोग छिन गया, इसके लिए देवता दुखी हैं। और वे ऐसा मानते हैं कि यदि रावण का विनाश हो जाए तो समस्या का अंत हो जाए। यह दृष्टि किस प्रकार की है? जैसे किसी एक व्यक्ति को जोरों का बुखार हो आया, अब यह जो बुखार है, एक चिकित्सक ऐसा कह सकता है कि मैं एक गोली देता हूं, मेटासिन देता हूं, एंटीबायोटिक देता हूं, बुखार तुम्हारा उतर जाएगा। ठीक है, उसने एक हाई डोज दे दिया, उससे बुखार उतर गया। क्या इससे सचमुच रोग का समाधान हो गया, रोग दूर हो गया? इससे रोग तो दूर नहीं हुआ। वह जो रोग का लक्षण ताप के रूप में दिखाई देता था, उस ताप का उपशम थोड़ी देर के लिए हो गया हो, पर जब तक रोग को जड़ से उखाड़ करके विनष्ट नहीं कर दिया जाता, तब तक रोग का नाश नहीं कहा जा सकता। अभी मैंने एक गोली ले ली, पसीना आ गया, बुखार उतर गया, पर बहुत संभव है कि थोड़ी देर बाद फिर से मुझे बुखार चढ़ जाए, क्योंकि रोग की जड़ों पर प्रहार नहीं किया गया है। ये देवता कैसे हैं? ऊपर में रोग का जो लक्षण दिखाई देता है, मोह के रूप में, अहंकार के रूप में, काम के रूप में, रावण के रूप में, कुंभकर्ण के रूप में, मेघनाथ के रूप में, देवता ऐसा मानते हैं कि इन पर प्रहार कर दो तो समस्या का विनाश हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा नहीं मानते, वे बल्कि यह मानते हैं कि जब तक रोग की जड़ पर प्रहार नहीं किया जाएगा, तब तक ये रोग तो फिर कभी ना कभी उत्पन्न होते ही रहेंगे। एक रावण मर जाएगा, पर दूसरा रावण फिर से उत्पन्न हो जाएगा, यह परंपरा चलती रहेगी। तो देवताओं की दृष्टि कैसी है? बड़ी उथली, बड़ी सतही। वे ऐसा मान लेते हैं कि बस रावण का विनाश हो जाए तो हमारी समस्या का अंत हो जाए। ये कैसे हैं देवता? वैसे तो ऊपर ऊपर से बहुत भक्ति दिखाते हैं, और ऐसा लगता है कि ये कितने भक्तिमान हैं। प्रसंग गोस्वामी जी हमारे समक्ष रखते हैं, जिस समय रावण का वध भगवान श्री राम ने कर दिया, जिस समय राक्षस कुल का संहार हो गया, ये देवता आते हैं और आकर के भगवान श्री राम की वंदना करते हैं, और साथ ही साथ रावण की बड़ी निंदा करते हैं। निंदा करते हुए क्या कहते हैं? विश्वद्रोहरत यह खल कामी, निज अघ गय कुमार गामी, यह खल मलिन सदा सुर द्रोही, काम लोभ मदरत अति कोही। वही कहा कि यह सदा अत्यंत मलिन था और सुरद्रोही था। अब यदि मेरा कोई शत्रु मारा जाए किसी व्यक्ति के द्वारा, तो यह तो बहुत स्वाभाविक है कि मैं उस व्यक्ति के पास जाऊंगा और उस व्यक्ति की बड़ी प्रशंसा करूंगा, और प्रशंसा में यह भी कहूंगा कि वाह, आप धन्य हैं, आपने मेरे शत्रु का विनाश कर दिया, यह मुझे बहुत तंग करता था। तो यह बात तो मैं कहूंगा, तो इसमें मैं समझता हूं कि क्या विशेष बात है। तो ये जो देवता हैं, वे जाकर के श्री राम के पास उनकी स्तुति करते हैं कि प्रभो, आपने सचमुच इस रावण का विनाश करके हमें धन्य कर दिया है। यह विश्व का द्रोह करता था, पर द्रोह रत यह दुष्ट, पायो सुफल पापिष्ठ, यह पापिष्ठ था पर द्रोह में रत था। आपने इस खल का विनाश करके हम जो अनाथ हो गए थे उन्हें सनाथ कर दिया है। कितनी सुंदर बात है, देवता भगवान श्री राम की वंदना कर रहे हैं, रावण की निंदा कर रहे हैं, तो स्वाभाविक ही ऐसा लगता है कि ये देवता बड़े भक्त हैं। पर क्या गोस्वामी तुलसीदास जी इन देवताओं को भक्त मानते हैं? यह प्रश्न है। वे नहीं मानते, इन देवताओं को वे भक्ति की दृष्टि से नहीं देखते, बल्कि वे तो देवताओं पर अभियोग लगाते हैं, दोषारोपण करते हैं। जिस समय वे देवता रावण वध देख करके अपने विमानों में बैठे हुए थे, ऊपर आकाश में नीचे आते हैं, और श्री राम के पास जिस समय जाने लगते हैं, तो तुलसी कहते हैं, देखो देखो ये कौन जा रहे हैं देखते हो, भगवान का तो बड़ा नाम लेते हैं, प्रशंसा के गीत तो बहुत गाते हैं, पर ये हैं कौन?
आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहीं जनु परमार्थी।
सदा के स्वार्थी देवता ही आए हैं और बहुत परमार्थी वचन कह रहे हैं। उनके वचनों को सुनकर के लगता है कि भगवान श्री राम के चरणों में इनकी कितनी अनुरक्ति है और रावण के प्रति इनका कितना विद्वेष है। ऐसा लगता है कि ये बड़े भक्त हैं, पर गोस्वामी जी हमें सावधान कर देते हैं कि पाठकों सावधान होकर के इस देवता चरित्र को देखना। देवता चरित्र बड़ा विचित्र है, ये केवल स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ को देखना चाहते हैं। मतलब क्या कि यहां तक तुलसी कह देते हैं कि ये देवता तो ऐसे हैं, यदि रावण से उनका स्वार्थ सधता हो तो वे रावण के पीछे चलें, और यदि श्री राम से उनका स्वार्थ सधता हो तो वे राम के पीछे चलें। उन्हें अपने स्वार्थ से काम है, अपनी इच्छा पूर्ति से काम है, उन्हें अपना भोग मिलना चाहिए, चाहे वह भोग रावण से उन्हें प्राप्त हो अथवा राम से प्राप्त हो, इसमें वे किसी प्रकार का अंतर नहीं करेंगे, केवल भोग चाहते हैं। और एक सटीक बात कह देते हैं, ये देवता हैं वे कौन है? भोगी। और ये जो दानव हैं वे कौन है? भोगवादी। दोनों में क्या अंतर है? भोगी तो दोनों हैं, दोनों ही भोग चाहते हैं। ये देवता भी ईश्वर नहीं चाहते, दानव भी ईश्वर नहीं चाहते, देवता भी भोग चाहते हैं और दानव भी भोग चाहते हैं। अंतर क्या है कि दानव है भोगवादी। इसका मतलब क्या हुआ? जिनका वाद ही भोग है, जिनका सिद्धांत ही भोग है, और इसलिए दानव अपने लिए भोग की इच्छा तो करते हैं, पर उस इच्छा की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार का उपाय अवलंबित करने में किसी हिचक का बोध नहीं करते। जबकि देवता कैसे हैं? उन्हें भी भोग चाहिए, पर जरा गलत उपाय से भोग मिले तो उन्हें थोड़ा सा संकोच होता है, बस इतना ही। पर भोग पाने की दृष्टि से दोनों समान, राक्षसों को भी भोग चाहिए, देवताओं को भी भोग चाहिए। तो देवता हैं भोगी, राक्षस हैं भोगवादी, और गोस्वामी जी कहते हैं कि भोगी और भोगवादी में कोई विशेष अंतर तो होता नहीं, क्योंकि वे दोनों ही भोग चाहते हैं। एक है जो साधन की परवाह नहीं करता, किसी भी साधन से मुझे भोग मिले, भोग ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। अब ये देवता हैं जरा साधन के संबंध में थोड़ी सी मानो चिंतना करते हैं कि नहीं यह साधन अच्छा नहीं, भोग तो हम चाहते हैं पर जरा अच्छे उपाय से मिल जाए, जरा ठीक तरीके से मिल जाए तो अच्छा है। यह मानो देवताओं का विचार, पर वह बहुधा विचार तक ही सीमित रहता है, ऐसा गोस्वामी जी का संकेत है। और वे दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? देवताओं के इस चरित्र को दिखाते हैं दो प्रसंगों के माध्यम से। एक तो प्रसंग वह है जिस समय भगवान का संकेत पाकर के भैया लक्ष्मण ने शूर्पणखा के कान और नाक काट दिए, तो शूर्पणखा रोती ही जाती है खर और दूषण के पास, और वहां जाकर के बहुत धिक्कारती है। क्या कहती है जाकर के?
नाक कान बिनु भय बिकरारा, जनु श्रव से लगे रुके धारा, खर दूषण पही गई बिल पाता, धिक धिक तव पौरुष बल भ्राता।
तुम कैसे भाई हो, लोग तुम्हारे बल की प्रशंसा करते हैं, तुम्हारा पौरुष व्यर्थ है, तुम जैसे भाइयों के रहते मेरी यह दुर्दशा हो गई। और तब पूछा दुखित होकर के खर दूषण ने, किसने तुम्हारी ऐसी दुर्दशा की? बता दिया शूर्पणखा ने सब कुछ। तो हम पढ़ते हैं कि खर दूषण त्रिशिरा 14,000 राक्षसों की सेना लेकर के जाते हैं श्री राम पर चढ़ाई करने के लिए। उनकी कामना है कि वे श्री राम को बंदी बना लें या छोड़ दें, पर उसकी सुंदरी पत्नी को ले लें, इस कामना से जाते हैं। भगवान श्री राम ने देखा निशिचरों की सेना आ रही है, वे लक्ष्मण जी से कहते हैं, लई जाने की ही जाहू गिरिकंदर, आवा निशिचर कटक भयंकर। लक्ष्मण, तुम जानकी जी को लेकर के गिरि की कंदरा में चले जाओ, उनकी सुरक्षा में तैनात रहो,
और मैं इस राक्षसी सेना से निपट लेता हूं।